Objective Mudli, 18th November 1985. Objective Bab Dada ki Kumar se mulaqat, pehla group. Kumar arthat nirbandhan. सबसे बड़ा बंधन मन के व्यर्थ संकल्पों का है, इसमें भी निर्बंधन। कभी कभी यह बंधन बांध तो नहीं लेता है, क्योंकि संकल्प शक्ति हर कदम में कमाई का आधार है। याद की यात्रा किस आधार से करते हो? संकल्प शक्ति के आधार से बाबा के पास पहुंचते हो ना, अशरीरी बन जाते हो तो मन की शक्ति विशेष है। व्यर्थ संकल्प मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं, इसलिए इस बंधन से मुक्त कुमार अर्थात सदा तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि जो निर्बंधन होगा उसकी गति स्वतः ही तीव्र होगी। बोझ वाला धीमी गति से चलेगा, हल्का सदा तीव्र गति से चलेगा। अभी समय के प्रमाण पुरुषार्थ का समय गया, फिर कौन सा समय? अब तीव्र पुरुषार्थ बन, पुरुषार्थी बन, मंजिल पर पहुंचना है। 18 नवंबर 1985 बाबा कह रहे हैं, कुमार अर्थात निर्बंधन सबसे बड़ा बंधन है मन के व्यर्थ संकल्पों का, इसमें भी निर्बंधन। कभी कभी यह बंधन बांध तो नहीं लेता है, क्योंकि संकल्प शक्ति हर कदम में कमाई का आधार है। याद की यात्रा किस आधार से करते हो? संकल्प शक्ति के आधार से बाबा के पास पहुंचते हो ना, अशरीरी बन जाते हो तो मन की शक्ति विशेष है। व्यर्थ संकल्प मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं, इसलिए इस बंधन से मुक्त कुमार अर्थात सदा तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि जो निर्बंधन होगा उसकी गति स्वतः ही तीव्र होगी। बोझ वाला धीमी गति से चलेगा, हल्का सदा तीव्र गति से चलेगा। अभी समय के प्रमाण पुरुषार्थ का समय गया, अब तीव्र पुरुषार्थी बन, मंजिल पर पहुंचना। दूसरा ग्रुप, कुमारों ने पुराने व्यर्थ के खाते को समाप्त कर लिया है, नया खाता समर्थ खाता है, पुराना खाता व्यर्थ है। तो पुराना खाता खत्म हुआ है। वैसे भी देखो व्यवहार में कभी पुराना खाता रखा नहीं जाता, पुराने को समाप्त कर आगे खाते को बढ़ाते रहते। तो यहाँ भी पुराने खाते को समाप्त कर सदा नए ते नए हर कदम में समर्थ हो, हर संकल्प समर्थ हो। जैसा बाप वैसे बच्चे, बाप समर्थ है तो बच्चे भी फॉलो फादर कर समर्थ बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, कुमार अर्थात क्या? संपूर्ण निर्बंधन। और सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? मन के व्यर्थ संकल्पों का बंधन। इस बंधन से भी मुक्त संकल्प शक्ति के आधार से क्या क्या करते हो? अशरीरी बनते हो और बाप के पास पहुंच जाते हो और सभी बंधन को समाप्त करते हो, कमाई जमा करते हो और मनन करते हो, पाप भस्म करते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि मन के जो व्यर्थ संकल्प है वो संकल्प शक्ति को क्या करता है? कमजोर कर देता है। तो यहाँ दो बातें हैं, एक है व्यर्थ संकल्प और दूसरा है संकल्प शक्ति। सबसे पहले संकल्प शक्ति। तो संकल्प शक्ति से हम क्या क्या कर सकते हैं? चिंतन का विषय है कि बाबा कह रहे हैं संकल्प शक्ति से तुम बाबा के पास पहुंच जाते हो, संकल्प शक्ति से अशरीरी अदेही बन जाते हो, संकल्प शक्ति से याद की यात्रा करते हो। तो मन में जो संकल्प उत्पन्न होता है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं? थोड़ा प्रैक्टिकल, खोया हुआ स्वराज पा सकते हैं और
खोई खुशी
पा सकते हैं, अपने को शुद्ध बना सकते हैं और
अपने जीवन का महत्व जान सकते हैं,
और अतिंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं और
संकल्प से दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं,
केवल संकल्प से। असंभव को संभव कर सकते हैं और निराश थकी हुई आत्मा को रहम दिल बन सेवा द्वारा सहारा दे सकते हैं और
पहले संकल्प
मन स्वस्थ होगा, उससे भी ऊपर की सबसे पहली पॉइंट जो है संकल्प से कर सकते हैं वो है संकल्प से इस देह की बीमारियों को नष्ट किया जा सकता है। संकल्प से क्या क्या कर सकते हैं? तो बीमारियों का उपचार, सबसे फर्स्ट पॉइंट है बीमारियों का उपचार। केवल संकल्पों के द्वारा शरीर में आई हुई सभी बीमारियों से मुक्त हुआ जा सकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है, केवल संकल्पों के द्वारा। यदि वो संकल्प इतना शक्तिशाली है तो संसार में आज इतनी सारी बीमारियां है वो जो लाइलाज है, जो कि मन से उत्पन्न हो रही है। पहले जब बीमारियां थी तो चिकित्सक कहते थे कि 40% बीमारियां है जो मन से उत्पन्न हो रही है, फिर कहने लगे 60%, 80%, अभी 90% से भी ज्यादा जो भी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होने से पहले वो मन में उत्पन्न होती है। व्यक्ति उन्हें आह्वान करके पुकारता है और स्वयं बीमारियों से ग्रसित होता है। तो मन में जो शरीर में जो बीमारियां उत्पन्न होती है, चाहे कोई भी, यदि मन में कोई संकल्प करे तो उन बीमारियों से मुक्त हुआ जा सकता है। इवन द वेनम ऑफ द स्नेक इज पावरलेस इफ यू कैन फर्मली डिनाई इट, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यदि सांप ने तुम्हें काटा है परंतु यदि तुमने अस्वीकार कर दिया उसको, तो वो जो विष है वेनम सांप का वो भी शक्तिहीन हो जाएगा यदि संकल्प किया जाए तो। परंतु वो संकल्प की क्वालिटी क्या होनी चाहिए वो प्रश्न दूसरा है। संपूर्ण पॉजिटिव तो बहुत छोटी बात है, उसके भी ऊपर शक्तिशाली संकल्प होना चाहिए। जो भी महान कार्य होते हैं उसकी शुरुआत संकल्पों से होती है। यदि हम संकल्प करें कि चाहे कैसी भी बीमारी हो मैं इस बीमारी से संपूर्ण रूप से मुक्त हूं, अपने ही योग के प्रयोग से, अपने ही संकल्प शक्ति के प्रयोग से मनुष्य किसी भी बीमारी से मुक्त हुआ जा सकता है, चाहे कैंसर हो या कोई भी हो। परंतु वो बात वही है कि किस क्वालिटी का वो संकल्प है, कितनी एकाग्रता है उस संकल्प में, वहां पर विश्वास का नियम लागू होता है, द लॉ ऑफ फेथ, एज पर योर फेथ यू शैल रिसीव, जैसा तुम्हारा फेथ होगा उसी अनुसार तुम्हें वो प्राप्त होगा, जिस तरह तुम्हारा विश्वास होगा। यदि विश्वास में ही डगमग है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, संकल्प का तो कर दिया है, नहीं हुआ तो ये भी साथ साथ संकल्प है। हिसाब किताब तो है वो अपनी जगह पर, परंतु फिर भी हम अपने संकल्पों से शरीर के रोगों का उपचार कर सकते हैं, क्योंकि मन चेतन और अवचेतन है, अवचेतन मन में अनंत शक्तियां समाई हुई है, अनंत शक्तियां सबने किया है। बहुत सारा प्रत्यक्ष दिखता है, बहुत सारा अप्रत्यक्ष रूप में है, चाहे कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, क्योंकि बीमारियों का उद्गम स्थान भी मन ही है, तो उनका उपचार भी वहीं से पहले शुरुआत होता है। कई सारे रोगी ऐसे हैं कि जिन जो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि जिनके देह में वो बीमारी है ही नहीं, वो बीमारी मन में है। किसी को लकवा हुआ है, पैरालिसिस, डॉक्टरी जांच के मुताबिक तो वो पैरालिसिस शरीर में है ही नहीं कहीं, परंतु फिर भी वो चल नहीं पाता है, पैरालिसिस है। अचानक एक दिन जब आग लग जाती है घर में तो भाग के बाहर आता है, और जब उसे बताते हैं कि तुम भागे कैसे, तुम तो पैरालिसिस थे, वहीं रुक जाते हैं। अरे हाँ, अब मैं नहीं चल सकता, अब तो एक मुसा पैरों की उंगली भी नहीं हिलती है। जब उसे फिर से स्मरण दिलाया जाता है कि तुमको तो पैरालिसिस था, तो फिर से पैरालिसिस कंडीशन में चला जाता है। यहां ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, वहीं से उसको पहले नष्ट करना है। अगर किसी व्यक्ति को पूछा जाए गहराई में, रोगी को, क्या वो वास्तव में ठीक होना चाहता है, तो शायद उत्तर होगा नहीं, क्योंकि बीमार होने के बाद जो उसके मन में इच्छा थी सहानुभूति प्राप्त करने की, वो पूर्ण होती है सूक्ष्म रूप से। जो उसे जन्म भर किसी ने उसके तरफ पूछा नहीं था, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया था, अटेंशन और केयर और लव उसे प्राप्त होता है। नहीं तो कौन पूछता है? जिनके जीवन में बचपन में प्यार नहीं मिला माँ बाप से या मित्रों से, वो एक अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, कि जो किसी को भी, किसी चिकित्सक को समझ में नहीं आती उनकी बीमारी क्या है, यहां से वहां और वहां से वहां भटकते ही रहते हैं, डॉक्टर शॉपिंग जिसको कहते हैं। तो सबसे पहला, संकल्प से देह की बीमारियां ठीक हो सकती है। दूसरा, मन की बीमारियां तो होगी ठीक, देह की बीमारियां ठीक हो जाना यह आश्चर्य है। माया की, माया की छमछम और माया की रिमझिम, मंजू बहन, माया की छमछम और माया की रिमझिम कम नहीं है। मास्टर नॉलेजफुल आत्माओं को पहले से ही जान लेते हैं, जो ज्ञान युक्त है और जो योग युक्त है। जो ज्ञान युक्त है वो ये नहीं कह सकते कि ये बात से हम अनजाने हैं, हर बात मुझे पता नहीं है, ऐसा वो नहीं कह सकते। योग युक्त जो है वो पहले से ही अनुभव हो जाता है कि ये होने वाला है। तो माया के किसी भी रूप को के रूप से वो अनजान नहीं है। माया कितनी भी रौनकदार हो, वो स्वयं को क्या करते हैं अरविंद भाई, बचा लेते हैं। आज का वरदान है। तो माया के किसी भी रूप से माया आए, किसी भी स्वरूप से आए, संकल्प के द्वारा ही उन्हें नष्ट हो किया जा सकता है, क्योंकि माया संकल्पों के द्वारा ही आती है, तो उन्हें नष्ट भी वहीं पर किया जा सकता है, संकल्पों के तल पर, इससे पहले कि वो कर्म बन जाए और फिर उसका पश्चाताप करे और फिर सब कुछ करे। संकल्पों में आई, संकल्पों में ही नष्ट कर दो। संकल्प आया और दूसरा संकल्प से, दिस इज नोन एज कॉन्ट्ररी थॉट्स, क्रिएटिंग कॉन्ट्ररी थॉट्स। जो संकल्प आया उसके विरोध के संकल्प खड़े करो, एंटीडोट। नए संकल्प, जो एक संकल्प आया, विकार का संकल्प आया, तो निर्विकार का संकल्प वहीं क्रिएट करो। इसे कहा जाता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट। इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैसी होती है, ये है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में संकल्प आ गया, अब इतना आवेग और इतना जोश और इतना आवेश है उस संकल्प में कि उस संकल्प को यदि रोका नहीं गया, वो तुरंत कर्म हो या बोल बन जाएगा, मूर्त रूप धारण करेगा बोल का, और बोल एक बार बन गया और तीर चल गया, फिर कुछ नहीं कर सकते। कर कब सकते हैं? हम जीवन में उसी चीजों के लिए पश्चाताप करते हैं जो हमने बोल दिया और कर दिया. वी नेवर रिपेंट फॉर दोज वी थॉट. केवल संकल्पों के तल पर जो आया उसके लिए हम इतना पश्चाताप नहीं करते, कितना भी बुरा संकल्प हो, परंतु पश्चाताप उसके लिए थोड़ा कम है क्योंकि आया और चला गया. पर जो बोल दिया उसको तो कुछ नहीं कर सकते, वो प्रत्यक्ष हो गया, उसने साकार रूप वहां धारण कर लिया है. केवल जो मन के तल पर आया है, तो मन के तल पर आया उसको वहीं पर समाप्त कर देना. क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्ररी थॉट्स, इमरजेंसी माइंड कंट्रोल में ये मेथड सिखाई जाती है. जैसे क्रोध आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है कि अभी क्या करूं और क्या नहीं. अगर वो शायद हम गलत भी होंगे, उस समय क्या किया जाए? उस समय मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और मैं परम धाम का निवासी हूं और शांति के सागर मेरे पिता हैं, ये संकल्प थोड़े ढीले पड़ जाते हैं. तो वहां पर कुछ ऐसे संकल्प हमारे पास रेडी चाहिए. किस मौकों के लिए? इन इमरजेंसी के लिए, चाहे वो काम का आवेग हो. सबसे तीव्र आवेग काम विकार का है, उसके बाद निगेटिव का, और उसके बाद व्यर्थ का, और उसके बाद साधारण संकल्प का. परंतु सबसे तीव्र जो आवेग है, जिसे व्यक्ति रोक भी नहीं पाता और तुरंत उसके वश होता है और विकर्म कर बैठता है. जितने संसार में अपराधी है, बड़े बड़े, जिन्होंने विकर्म, कुकर्म और दुष्कर्म किए हैं, अगर उनको पूछा जाए कि ये दुष्कर्म तुमने क्यों किया, वो कहते हैं कि मैं करना नहीं चाहता था, परंतु उस समय क्या हुआ पता नहीं चला, उस समय ही रोक नहीं सका. इंद्रिया इतनी तीव्र थी कि इंद्रिय के उन आवेगों को रोक नहीं पाते हैं. उस समय इमरजेंसी, इन द हार्ट ऑफ दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी, इन द हार्ट ऑफ दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी. ये जो पल है, ये जो क्षण है, इसी में ही सब कुछ समाया हुआ है. इस पल को ही वश में कर लेना है, तो शायद वो विकर्म, वो दुष्कर्म, वो पाप, वो अपराध, वो बोल, वो क्रोध, वो हिंसा नहीं होगी. तो क्या करना चाहिए? कॉन्ट्ररी थॉट्स क्रिएट करना, अर्थात अपोजिट, उसके विरोधाभासी विचारों को उत्पन्न करना. इतना क्रोध आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है, क्या किया जाए? उसके प्रति विरोधाभास का संकल्प कौन सा है? प्रेम का संकल्प है. कौन सा प्रेम का संकल्प उत्पन्न करे फिर? उसमें कुछ देखना होगा मन की आंखों से. जैसे वो कई एक बार बताया था ना, 7S इमरजेंसी कंट्रोल के 7S याद है? एक बार बताया था यहां पर. उसमें एक था स्वैप. अगर इमरजेंसी कंट्रोल 7S से किया जा सकता है, सबसे पहला होता है स्टॉप. सबसे पहला है स्टॉप, मतलब मन को आदेश देना, स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, फुल ऑथोरिटी से, फुल पावर से आदेश देना, स्टॉप. ये एक मेथड है. ये कॉन्ट्ररी थॉट्स नहीं है, कॉन्ट्ररी थॉट्स दूसरे जिसकी मैं चर्चा कर रहा था. कॉन्ट्ररी थॉट्स अर्थात क्रोध आया तो एक छोटे से बच्चे का निरागत चेहरा देखना, फूल को देखना, जीवन में हुए हुए जो प्रेम पूर्ण प्रसंग है, अव्यक्त बाप दादा से हम मिल रहे हैं, वो सीन तुरंत इमर्ज करना. ये सारी कुछ कुछ बातें हैं जो हम इमर्ज कर सकते हैं, जो हमारे जीवन में हुई हुई घटनाएं हैं, प्रेम वाली घटनाएं, परंतु उनका पहले से ही अभ्यास चाहिए, बार बार स्मरण चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, वो सारी बातें. तो सबसे पहला वो जो 7S है उसमें है, सबसे पहला है स्टॉप. कहना स्टॉप कर दो मन को, जैसे आत्मा राजा है और ऑर्डर कर रही है. स्टॉप मतलब स्टॉप. एक दूसरा था स्वैप. स्वैप अर्थात जो हम कह रहे थे रिप्लेस करना, निगेटिव थॉट को पॉजिटिव से, व्यर्थ को समर्थ से, विकार को निर्विकार से, स्विच कर देना, तुरंत थॉट को चेंज करना मन ही मन में. क्योंकि वहां ऐसा होता है कि हम नहीं करना चाहते विचार को चेंज, हम सोचते हो जाने दो, जो होगा उसको साकार रूप देने के लिए सारी इंद्रिया, सारी कर्मेंद्रिया तीव्रता तत्पर हो जाती है. पर वहीं उसको पहले स्टॉप करना, फिर स्वैप. स्वैप स्वैप स्टार्ट नहीं स्टॉप स्वैप स्वैप एस डब्ल्यू ए पी स्वैप अर्थात टू रिप्लेस वन थॉट विथ अनदर थॉट. तीसरा है स्विच एस डब्ल्यू आई टी सी एच स्विच कर देना अर्थात उस जगह से निकलकर बाहर निकल जाना. जैसे यहां बैठकर वो संकल्प आ रहा है उस स्थान को ही छोड़ देना एक्टिविटी चेंज कर देना फटाफट कोई दूसरी सेवा में लग जाना यहां से जाकर सीधा किचन में चले जाना और सेवा करना चालू कर देना. क्रोध आने वाला है पता है एक्टिविटी चेंज स्थान चेंज सब कुछ चेंज उस स्थान को तुरंत छोड़ देना उस स्थान पे ज्यादा समय नहीं रहना. हमको पता है कि उसने हमें ये बोला और वो व्यक्ति यहां आने वाला और वो आया तो हम ऐसा ऐसा उसको कहेंगे. पूरा मन षड्यंत्र करके तैयार है कि उसने हमें ऐसा कहा अब हम ये कहेंगे. मन ने तुरंत प्लानिंग मन प्लानिंग बुद्धि इतना ज्यादा है कि तुरंत कुछ सेकंड में ही पूरी प्लानिंग कर देता है. पर यदि उसको कहा कि यहां पर बैठकर बोलना है उसकी प्लानिंग को 5-6 दिन लग जाते हैं. पर फिर भी थोड़ी प्लानिंग कम ही रहती है फिर भी कहते हैं कि मैंने कभी किया नहीं है तो कैसे करूंगा. परंतु अगर किसी ने हमारे विरोध में कुछ कहा हम इतनी सेवा अच्छे से करते हैं और कोई कहता है ये हमेशा ही लेट आता है इसकी सेवा में ध्यान ही नहीं है इसका इसकी बुद्धि इधर उधर भटकती है तो हमारे पास में तुरंत संकल्पों का पूरा एक फॉर्मेट तैयार हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम इसने ऐसा कहा तो हम ये बोलेंगे. ये प्लानिंग के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है तो माइंड की प्लानिंग बुद्धि तो है. तो तीसरा था स्विच. चौथा है SHHH अर्थात चुप अर्थात ध्यान अर्थात योग अर्थात स्वयं से रूरियान या बाप से रूरियान. ये तो संसार की फिलॉसफी है 7S. हमारे ज्ञान योग के अनुसार हम कह सकते हैं योग परंतु योग वहां मुश्किल होता है उन इमरजेंसी पलों में. तो विजुअलाइजेशन या फिर मेडिटेशन या फिर स्वयं से बातें या फिर चुप हो जाना साइलेंस. फिर और एक यस है स्क्राइब. स्क्राइब अर्थात लिखना. इसके लिए लिखने की आदत जरूरी है ताकि हम सारे अपने मन में जो आवेग उत्पन्न हुआ है उद्वेग उत्पन्न हुआ है संकल्पों की जो हलचल उत्पन्न हो गई है कोलाहल कोराम जो मचा है संकल्पों का उसको किसको बताए. बताने के लिए कोई है नहीं और जो थे वो उनके मोबाइल स्विच ऑफ और हो गए भी बताया भी तो क्या कोई मिलने में कुछ फायदा होने वाला है उनसे. इस संसार में हम अपनी जीवन की भावनाओं को और अपनी समस्याओं को जितना दूसरों को सुनाते बैठते हैं उतना ही वो और बढ़ती है इसके लिए वो कम नहीं होती है. स्क्राइब. फिर है स्पेकुलेट. स्पेकुलेट अर्थात यहां पर उदाहरण दिया है कि जो भी संकल्प या परिस्थिति आई है भय की हम उसमें ये सोचे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है. व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन इन दिस कंडीशन और स्वयं को निर्भय कर सकते हैं वहां पर. अगर ये इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहां कहा जाता है स्पेकुलेट. स्पेकुलेट अर्थात ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा हो क्या सकता है ये कंडीशन. अगर ये बात हो गई ये भय की सिचुएशंस के लिए कहा गया है तो कितने हो गए 6 हो गए. और एक है याद है किसी को यहीं पर सुनाया था बहुत पहले सुनाया था इतना याद है तो बाबा के बताए थे वो दूसरे एक है. फिर एस जो यहाँ पे अरविंद भाई ने सुनाया था सॉन्ग याद है ना आप ही ने सुनाया था सॉन्ग बाबा के गीत सुनना सॉन्ग. एक है स्वर्ग. तुरंत अगर स्वर्ग में जाने का अभ्यास है रोज रोज अमृत वेला और शाम तो वो सारी सीन वो सारा परिवार वो दैवी वायुमंडल वो स्वर्गिक छटा तुरंत उसको याद करना जिसको हम कहते हैं 5 स्वरूपों का अभ्यास. परंतु यहाँ एस में और एक चीज है. तो सबसे पहला था स्टॉप दूसरा था स्विच फिर था स्वैप फिर था स्क्राइब फिर था स्पेकुलेट और फिर था और एक है
ऊपर चला गया पीछे चला गया,
एक अलग से पॉइंट है। चलो याद आया तो बताएंगे। तो ये इमरजेंसी कंट्रोल है। तो संकल्प से क्या किया जा सकता है? तो पहला हमने बताया संकल्प से शरीर की बीमारी, दूसरा मन की बीमारी या फिर माया को पहचानना, जानना, समझना और उसको मन में ही नष्ट कर देना। मन में इस तरह से विचार आया तो एक नया कॉन्ट्ररी थॉट्स क्रिएट करना। तीसरा संकल्प शक्ति से कोई भी दूर बैठी हुई आत्मा है, हम उसको संकल्प पहुंचा सकते हैं। हम संकल्प यहां करें और संकल्प उस तक पहुंचाए, टेलीपैथी, या उसका जो संकल्प है वो हम यहां से ही कैच कर सकते हैं। ये भी कार्य संकल्प से किया जा सकता है। किसी में व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहा है, उसके व्यर्थ को हम यहां से ही नष्ट करने का प्रयत्न करें। एक किसी में विकार के संकल्प चल रहे हैं, उसके विकार को अपनी प्यूरिटी की वाइब्रेशन से यहीं उसको रोज इमर्ज करके उसकी प्यूरिटी को बढ़ा सकते हैं। कोई भी आत्माएं हो संसार की, चाहे वेश्याएं हो या संसार के जो हॉलीवुड और बॉलीवुड वाले जो भी है, उनको हम प्यूरिटी के वाइब्रेशन से यहां से दे सकते हैं। किसी के भी मन की बीमारी को अपने संकल्पों से यहां से हम नष्ट कर सकते हैं। किसी भी आत्मा के विघ्न को वहां जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं बैठकर हम उस घर के विघ्न को, उस आत्मा के विघ्न को यहीं से नष्ट कर सकते हैं। यदि कोई आत्मा विघ्न में है, परेशान है, दुखी है, उसके दुख को हम यहां बैठकर, एक स्थान पर बैठकर उसको दुखों से मुक्त कर सकते हैं, विकारों से मुक्त कर सकते हैं, व्यर्थ से मुक्त कर सकते हैं, बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, उसके मन में नकारात्मक भाव है उससे मुक्त कर सकते हैं। यज्ञ का वो विरोधी है तो उसको सहयोगी बना सकते हैं। ज्ञान में नहीं चलता है, नास्तिक है, उसके हृदय में परमात्मा प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं केवल संकल्पों के द्वारा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इस संसार की वो आदिवासी आत्माएं हैं जो कि असभ्य समाज है, अनार्य है, अशिक्षित समाज है, जिन्हें लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, ना ही कुछ पता है ये क्या है, ऐसी आत्माओं के हृदय में भी परमात्मा प्रेम उत्पन्न कर सकते। ऐसी वो हिंसक आत्माएं भी होगी दूसरे संसार में, हिंसा में है, समाज विरोधी आत्माएं, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है, ऐसी जो आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी जो भी हो, उनके हृदय में भी ईश्वरीय प्रेम यहां बैठकर केवल संकल्पों के द्वारा प्रकट कर सकते, हम पहुंचा सकते हैं उनके हृदय में। वह आत्माएं जो हमारे विरोधी है, जो हमसे नफरत करती है, जो समझती है कि हम उनके जीवन में विघ्न है, जो समझती है हम ही उनके दुखों का कारण है, आत्माओं को इमर्ज करके उन्हें माफ किया जा सकता है और उनसे माफी मांगी जा सकती है। ये भी संकल्पों के द्वारा। संकल्प इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली है। संकल्पों से हम जो चाहे वह कर सकते हैं। किसी सन्यासी को, हिमालय पर बैठे एक सन्यासी को किसी एक टूरिस्ट ने कहा, आप हमारे देश में क्यों नहीं आते, अमेरिका में, वहां आप आ जाएंगे ना तो हम आपके बहुत सारे प्रवचन रखेंगे और फिर आपके प्रोग्राम रखेंगे और आपके द्वारा बहुत सेवा होगी। वो कहता है कि मैं यहां बैठकर तुम्हारे देश की जो सेवा कर रहा हूं ना, वो वहां आकर नहीं कर सकता। मैं यहां बैठकर ही तुम्हारे देश की सेवा कर रहा हूं, मुझे वहां आने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी संकल्पों में पावर है। टेलीपैथी, क्लायर ऑडियंस, क्लायर वॉयंस, ये सारी शक्तियां क्या है? यहां बैठकर उस कमरे में क्या चल रहा है वो हम सुन सकते हैं। यहां बैठकर दूर की आत्माओं का क्या चल रहा है वो हम सुन सकते हैं। यहां बैठकर किसी के मन में क्या चल रहा है वो हम सुन सकते हैं। थॉट रीडिंग देख भी सकते हैं, दूर क्या हो रहा है, दूर श्रवण और दूर दृष्टि, दूर क्या चल रहा है वो देख सकते। शास्त्रों में सारे उदाहरण है। वो नंदिनी गाय जो होती है ना, कामधेनु की पुत्री, वो भी वैसी, उसको वो चुरा लेके जाता है सहस्त्रबाहु, तो वो जमदग्नि देखता है, आंख बंद करके देखता है कि वो वहां है। कैसे देखता है? दिव्य दृष्टि कहो तो वो तो शक्तियां है, ये सारी संकल्पों की शक्तियां, जितनी सिद्धियां है, जितनी हम, हमारी प्यूरिटी बढ़ेगी, जितनी हमारे संकल्पों में एकाग्रता होगी, उतना हम स्वयं को और ज्यादा विकसित कर सकते हैं। संकल्पों में इतनी पावर है। कोई भी हम पढ़े, कोई भी चीज, कोई भी किताब, संकल्पों के द्वारा हमारी एकाग्रता इतनी बढ़ सकती है, इतनी बढ़ सकती है कि हम जो भी पढ़ेंगे वो हमें सहज ही स्मरण में रहेगा। चाहे कितनी भी बड़ी किताब हो, चाहे इतनी बड़ी किताब हो, स्वामी विवेकानंद के जीवन में दिखाते हैं जब वो फ्रांस में गए थे एक बार यूरोप यात्रा, सेकंड टर्म जब उनके जीवन में, तब किसी एक व्यक्ति ने एक किताब ली जो कि वो जर्मनी में थे तो जर्मन भाषा में वो किताब थी। तो उस व्यक्ति ने उस किताब की बहुत तारीफ कर रहा था कि ये किताब बहुत ही अच्छी है और ये ऐसी है वैसी है। तो उनसे कहते हैं मुझे ये एक घंटे के लिए पढ़ने के लिए दो तो मैं बता सकूं ये कितनी अच्छी किताब है। तो वो उसको देता है, होता है पर आपको तो ये भाषा भी नहीं पता, जर्मन भाषा, तो कैसे आप पढ़ सकोगे इसको। तो कहता है मुझे दो तो देता है। उसने दिखाया है ये बात कितनी सत्य है मुझे पता नहीं, क्योंकि उनके जीवन चरित्र में इस बात का उल्लेख नहीं है, परंतु कई सारे संसार भर की स्पिरिचुअलिस्ट जो है अध्यात्मवादी इस घटना को बताते हैं बार बार। तो कहा गया है कि उन्होंने किताब ली और खोली भी नहीं, केवल पन्ने ऐसे पलटाए, एक घंटे तक जैसे सारी बुद्धि को एकाग्र कर दिया। पहले कुछ समय तो अपनी बुद्धि को एकाग्र किया कि ये भाषा कौन सी है, जर्मन भाषा, पहले उस भाषा को अपने अंदर धारण किया और उसके बाद में बस किताब को ओवरलुक किया और बाद में उस व्यक्ति के पास गए और कहा कि ये किताब मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी किताब है, इसमें बहुत ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुमने पढ़ ली, और उन्होंने जो भी बात उस किताब की पूछी उन्होंने सब कुछ बताया। तो ये सब भी संभव है, मन में अनंत शक्तियां समाई हुई है। हम जो मन को जानते हैं, जैसा हिमखंड होता है ना, आइसबर्ग, वो ऊपर छोटा सा ही होता है पर नीचे बहुत होता है। ऊपर इज वन जस्ट वन टेंथ और नीचे 9/10 है, 9 भाग तो उसके नीचे है, जो हमको पता ही नहीं है मन में कितनी शक्तियां है। अनंत शक्तियां समाई हुई है, अनंत शक्तियां, हम कुछ भी कर सकते हैं, इतनी शक्तियां उसमें है। आज किसका टर्न है? पूर्णिमा बहन है शायद एबसेंट,
ईद का टर्न
है। तो दूसरा एक संकल्प से, ये जो मुसलमान में जो रमजान होता है वो कैसे कर सकते हैं, वो भी संकल्प के ही प्रयोग है। एक रीति से देखा जाए तो सारे दिन भर बिना अन्न के रहना, बाकी समय नहीं रहते ये लोग, परंतु यहाँ पर जैसे एक सामूहिक संकल्पों की शक्ति क्रिएट हो जाती है कि ये करना ही है, वो संगठन का बल वहां मिल जाता है आत्मा को। नहीं तो वो आत्माएं जो दो दो तीन तीन घंटे में जिनको भूख लगती रहती है, वो कैसे, छोटे छोटे बच्चे भी रोजा रखते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। वहां पर भी जैसे माइंड पहले से क्रिएट किया जाता है कि ये है आज, ये है, ये होने वाला है, ये आने वाला है, और सहज हो जाता है वो कार्य, वो भी संकल्प का ही प्रयोग है। वो हमारे मन की कमजोरी है। कोई एक फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल खेल रहा है, उसके पैर में चोट लगती है, ठीक है, खून बहा जा रहा है, उसे पता ही नहीं, खेल रहा है, एक घंटा तक खेलता रहा, जब फुटबॉल की मैच पूरी हुई तब देखा कि अरे यहां तो खून निकल रहा है और फिर दर्द होने लगता है, और तब फिर डॉक्टर को बुलाओ और उपचार करो और खून को रोको। ये कैसे, मन की ऐसी सारी क्षमताएं हैं, मन के ऐसे कुछ नियम है जिनको हमको समझना है। तब ध्यान था ही नहीं उस चोट की तरफ, और जब ध्यान आया तब पता चला यहां दर्द हो रहा है। मतलब हम अपने मन को जहां चाहो वहां लगा सकते हैं। 1930 में काशी में एक काशी नरेश जो थे, उनकी एकाग्रता की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि तब रिसेंटली नया एनेस्थेसिया आया था, तो उनका एक पेट का ऑपरेशन करना था, जबकि फॉरेन के डॉक्टर्स भारत में थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के लिए एनेस्थेसिया देना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं गीता पढ़ते रहूंगा और आप ऑपरेशन करना, क्योंकि जब मैं गीता पढ़ता हूं तो मेरा ध्यान इतना एकाग्र हो जाता है कि आप ऑपरेशन करते रहो, मुझे पता भी नहीं पड़ेगा, आप चीरफार करो शरीर में। तो डॉक्टर तो घबराते हो, उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं। वो कहता है कि पहले हम छोटा मोटा थोड़ी प्रक्रिया करके देखेंगे कि सही में ऐसा होता है क्या। तो पहले छोटा मोटा किया, मतलब सोचो कि यहां से चीरा मारना शरीर में, अगर सुई चुभती है तो दर्द होता है, तो उसको चीरा वगैरह मारा और थोड़ा सा ट्राई किया, तो वो तो अपना गीता पढ़ने में मगन। उन्होंने कहा था जब मैं गीता पढ़ता हूं तो मेरी बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाती है, इतनी एकाग्र हो जाती है, मेरे संकल्प पूर्ण एकाग्र हो जाते हैं कि मुझे बाहर क्या चल रहा है इसका भान ही नहीं रहता है, यहां तक कि शरीर में क्या हो रहा है ये भी मुझे पता नहीं रहता है। तो उन्होंने पहले छोटे प्रयोग किए और बाद में उसके पेट का ऑपरेशन किया, अपेंडिसेक्टोमी। सोचो ये पूरा अपेंडिक्स के लिए यू हैव टू टेक द इंसिजन ऑफ अबाउट बिग्स इंसिजन, यहां पर मैकबर्नीज पॉइंट में वहां पे इंसिजन लिया, अंदर गए और वो अपने गीता पढ़ रहे हैं एक हाथ से, पता ही नहीं उनको, इतनी एकाग्रता। और फिर सिलाई भी कर दी, स्टिचेस देते समय तो और ज्यादा दर्द होता है, इंसिजन का जितना दर्द नहीं होता है उतना स्टिचेस का होता है, क्योंकि स्किन में इतने सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें ऐसा सुई डालो और बाहर निकालो और सुई डालो और बाहर निकालो और फिर स्टिच दो, दर्द ही नहीं, कुछ खबर नहीं। फिर उन्होंने पूछा हुआ क्या, उन्होंने कहा हो गया, उठो। उन्होंने कहा अभी और थोड़ा मेरा बाकी है, अध्याय उतना पूरा करता हूं फिर उठता हूं। मन में ऐसी अनंत शक्तियां है, जहां उसको लगा दो और एकाग्र यदि कर दो तो शरीर में भी क्या हो रहा है वो भी नहीं पता चल सकता है, पता नहीं चलेगा, इतनी उसमें शक्तियां एकाग्रता में। इसके लिए हमारा सारा जो योग है वो केवल एकाग्रता तो नहीं है, हमारा योग एकाग्रता से बहुत गुना अधिक, बहुत सारी चीजें, परंतु हमें कॉन्सेंट्रेशन का भी अभ्यास करना है। और कॉन्सेंट्रेशन का सबसे बेस्ट अभ्यास है, यदि कोई मुरली हम पढ़ते हैं तो मुरली होने के बाद अब क्या था उसमें, उसे याद करने का प्रयत्न करना क्या था उसमें, तब वो एकाग्रता आती है। कुछ भी हम याद करने की कोशिश करती है करते हैं तो एकाग्रता आती है। सारे दिन भर रात में बैठकर डायरी लिखना, क्या लिखना, योग का चार्ट लिखना, दूसरा याद का चार्ट लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, दिनचर्या को लिखना, सारे दिन भर अब तक क्या किया। इफ यू हैव टू डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी यू मस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग डायरी। यदि फोटोग्राफिक मेमोरी अर्थात जैसे कि तैसी याद, जैसे कि जो देखा जो सुना वो वैसे के वैसे याद रह जाए, उसके लिए डायरी लिखना। वो डायरी लिखना फिर धीरे धीरे इतना सूक्ष्म हो जाए कि अमृत वेले उठे तो इस करवट से उठे या उस करवट से उठे, कई कई लोग ये भी लिखना चालू करते हैं उसमें। फिर उठते ही क्या किया, बाथरूम में जो बकेट थी वो किस कलर की थी, यहां तक भी लोगों को याद रहता है। जो कपड़े किसने क्या क्या पहने थे, कितने लोग बैठे थे, उन्होंने किसी का यदि नाम सुन लिया तो वो नाम याद हो जाता है, नंबर किसी का फोन नंबर, वो सारी चीजें याद हो जाती। हमको याद है हम जब हिंदुजा हॉस्पिटल में थे मुंबई में, तो वहां हॉस्पिटल में जो आईसीयू था पेशेंट्स के नाम किसी को याद नहीं रहते थे, वहां पेशेंट के नाम का कोई लेना देना ही है, बेड नंबर 61, बेड नंबर 62, बेड नंबर 65, बेड नंबर 64। इन्फॉर्म भी करते थे तो ऐसे इन्फॉर्म करते, बेड नंबर 62 हैज ब्रेथलेस, बेड नंबर 67 को वेंटिलेटर पर डाला गया, बेड नंबर 72 को एंजियोग्राफी के लिए लिया गया, बेड नंबर 78 अभी ठीक है, पर बेड नंबर 78 के रिलेटिव्स बहुत परेशान कर रहे हैं, पर बेड नंबर 80 को ऐसा हुआ, बेड नंबर 61, बेड नंबर 62, और उसी अनुसार सबको याद रहता था। और वो बेड के पेशेंट चेंज भी होते रहते थे, जैसे बेड नंबर 62 तीन दिन है बाद में डिस्चार्ज हो गया, अभी उस बेड नंबर 62 पे दूसरा आया, तो सुबह जो कंसल्टेंट ने देखा कि ये बेड नंबर 62 है तो शाम को उसे याद रहता है कि बेड नंबर 72 का अब क्या हुआ, तो वो वाला याद नहीं रहता जो पहले वाला था, बेड नंबर 72 डिस्चार्ज हो गया अभी नेक्स्ट बेड नंबर 72 है वो याद है। ये माइंड तैयार होता है इस तरीके से,
इसलिए ऑपरेशन गड़बड़ हो जाते हैं, इधर का इधर कर देते
वो दूसरी बात है, पर हम मन के नियमों की बात कर रहे हैं, कैसे ये हमने पहली बार ही देखा वहां, नहीं तो हमको सारे पेशेंट के नाम वैसे याद रहते थे। कोई पेशेंट अगर एक बार भी हमको मिल गया, एक बार अगर किस पेशेंट को देखा और उसने कहा मैं ये हूं और मैं यहां का हूं, चाहे एक बार, बस एक ही बार देखा, उसको क्या क्या तकलीफ थी, उसका क्या नाम था और वो किस बेड पे एडमिट था, वो हमको सहज याद रहता है, सहज, चाहे वो 10 साल हो गया परंतु याद है कि वो एक बार आया था और उसको ये तकलीफ थी। तो ये कोई प्रयत्न नहीं किया उसके लिए, परंतु माइंड ही उस तरह ट्रेंड हुआ है, तो जो एक क्षेत्र में हुआ है वो सभी क्षेत्र में कार्य करेगा, जो उस क्षेत्र में हुआ तो वो ज्ञान योग के क्षेत्र में भी उसी तरह से कार्य करेगा, उतनी ही एकाग्रता होगी। तो माइंड का एक नियम है कॉन्सेंट्रेशन, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड इट इज द मोर पावरफुल इट बिकम्स, उसको पावरफुल बनाना है। इसके लिए एक नियम क्या है, डायरी लिखना। एक नियम क्या है जो हमने अभी, एक नियम इस क्लास के लिए हम कहते हैं, जो इस क्लास में हमने जो भी सुना, जो भी बैठ के यहाँ पे जो भी भाई जो भी मुरली पढ़ी जाती है, वो तुरंत याद करने की कोशिश करना कि कौन कौन से पॉइंट थे, टॉपिक क्या था, कौन कौन से उदाहरण दिए गए, क्या क्या बातें थी, कौन सी नई पॉइंट थी जो हमको पता ही नहीं थी, उनको याद करने का कोशिश। सीधा ये कुमार जीवन का मतलब वो जो पैराग्राफ है वो पढ़ लेना, वो दूसरी बात है, परंतु इसमें क्या क्या बताया गया था वो जैसे हम याद करने की कोशिश करेंगे, माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और ये अभ्यास, ये भी एक अभ्यास है, ये अभ्यास यहां भी करना है, क्योंकि नहीं तो मन का, तो जहां कह रहे हैं ना बाबा व्यर्थ संकल्प से मुक्त कैसे होंगे, मन तो भटकते ही रहता है, फिर कल क्या हुआ था, कल किससे मिले थे, आगे क्या करना है, बस यही सोचते रहता है। माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि वो ज्ञान और योग के अतिरिक्त और कुछ सोचे ही नहीं, यही सोचते रहे कि क्या है, क्या सुनाया गया, अभी जो मुरली सुनेंगे वहां पर क्या क्या पॉइंट्स थी। कई लोगों का खाली लिखने की आदत है, खाली लिखना नहीं है, याद करना है, यहां पर लिखने की आदत डालो। अब्राहम लिंकन ने कहीं कहा है एक जगह कि माय माइंड इज लाइक स्टील, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट एनीथिंग ऑन इट बट वंस रिटन इट कैन नॉट बी रेज्ड। मेरा मन जो है स्टील की तरह है, उस स्टील पर कुछ भी लिखना बहुत मुश्किल है, पर एक बार यदि वहां लिख दिया गया तो उसको फिर मिटाना असंभव है। तो हमारा माइंड जो हो उस पर हम जैसे कि स्टील है और वैसे लिख दे उसको, कुरेद दे, इतना शक्तिशाली। ओम शांति।